صلی اللہ رسول اکرم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. غیر من گزشتہ نشست میں یا اس سے پیوستہ نشست میں عید الاضحیٰ کے ضمن میں عیدین کا ذکر ہو رہا تھا کہ عید ہر کے لیے ہے, چاہے وہ کافر ہے یا مسلمان ہے, منکر ہے یا مشرک ہے. فرق عید کے روز کی کیفیت کا ہے. وہی کیفیت, وہی طریقہ جس سے عید منائی جا رہی ہے اسے ایک مومن کی عید بنا دے گا یا پھر عید کسی مشرک کی ہوگی, منکر کی ہوگی یا کافر کی ہوگی. کچھ ہی ہفتوں کے بعد عید الاضحیٰ آنے والی ہے. میں ذی الحج کے حوالے سے آپ کی توجہ کچھ اس کے فضائل کی طرف دلانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان 10 دنوں کی برکات سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرما دے. جس طرح رمضان کے بارے میں روایت ہے کہ ماہ رمضان تمام مہینوں کا سردار ہے, اسی طرح تمام دنوں میں ذی الحج کے عشرے کو فضیلت حاصل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب روایت کے مطابق یہ 10 دن تمام دنوں کے سردار ہیں. ان 10 دنوں میں کی گئی عبادات, ان 10 دنوں کے روزے رکھے گئے ایک سال کے عبادات اور روزوں کے برابر گنے جاتے ہیں. یہ بھی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے منسوب ہے. جو مسلمان ان 10 دنوں میں روزے رکھتا ہے, ہر 10 دن کے بدلے میں رب تعالی اسے ایک سال کے روزوں کے برابر ثواب بخش دیتا ہے. اسی طرح ان 10 راتوں میں کی گئی عبادات کا اجر بھی, ہر رات کی عبادت ایک سال کی عبادت کے برابر درجہ رکھتی ہے اس کے ثواب کے معاملے میں. ان 10 دنوں کی اہمیت کے سلسلے میں چند ایک چیزوں کی طرف توجہ میں دلا دوں کہ یہی وہ 10 دن ہیں جن میں جناب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی خطا کا اقرار کیا تھا اور اللہ سے معافی کے طلبگار ہوئے تھے. انہی 10 دنوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام, جن کی توکل دوسرے تمام انسانوں کی توکل سے زیادہ مکمل اور جامع ہے, آپ نے اپنی توکل کا اظہار فرمایا تھا کہ اپنی جان آگ کے لیے اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے پیش کر دیا تھا. یہ وہی 10 دن ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی 10 دنوں میں خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی تھی. ایک روایت یہ ہے کہ قرآن پاک کا نزول انہی 10 دنوں میں پہلی بار شروع ہوا اور مکمل ماہ رمضان میں 27 شب کو ہوا تھا. خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 ایام میں عبادت کی طرف بے پناہ راغب ہوتے تھے. ان 10 دنوں میں عبادات کی فضیلت کا اندازہ اسے واقعے سے آپ کو ہو جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ایک آدمی کو لایا گیا اور کہا گیا کہ حضور इसमें दूसरी कोताहियां तो हैं, लेकिन ये शख्स ज़िलहज के पहले 10 दिन रोजे रखता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से दरियाफ्त फरमाया कि तुम इन 10 दिनों में रोजे क्यों रखते हो? तो उस आदमी ने जवाब दिया कि हजूर, मैं और तो कोई नेक काम कर नहीं सकता, दूसरी खामियां हैं मेरे अंदर, लेकिन चूंकि ये 10 दिन हज के हैं, इसमें मैं रोजे रखता हूं और इबादत करता हूं, इसलिए कि इस तरह से शायद मैं भी उन हाजियों की और उन लोगों की जो इबादत गुजार हैं उनकी दुआओं में शरीक हो जाऊं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हारी नीयत ये है तो फिर ये यकीन रखो कि रब ताला तुम्हारे एक दिन के रोजे का सवाब एक साल के रोजों के बराबर अता फरमाएगा और एक रात की इबादत का सवाब अल्लाह तुम्हें एक साल की इबादत के बराबर अता फरमाएगा। खुदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन 10 दिनों में रोजे भी रखते थे और रातों को, ये असल में जो 10 दिन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ये गलत आम है, दर हकीकत ये 9 दिन हैं और 10 रातें हैं, लेकिन इसे गलत नाम की 10 दिन ही पुकारे जाते हैं, लेकिन मैं ये जरा से आपके लिए इसकी वजाहत कर दूं कि इन 10 दिन से जब मेरी मुराद 9 दिन और 10 रातें हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन 10 रातों में बेदार रहते थे, इबादत करते थे, हत्ता के अपने खादमीन को भी बेदार रखते थे कि इन रातों में इबादत करो, ये रातें इस लिहाज से बहुत अहम हैं। 8 दिन तो एक साल की इबादत के बराबर हैं, लेकिन अरफा का दिन जो है ये खास अहमियत का हामिल है। उस दिन ये रोजे का सवाब 2 साल के रोजों के बराबर है और अरफा की रात की इबादत का सवाब 2 साल की इबादत के बराबर है। हम में से जो साहिबान इबादत गुजार हैं अल्लाह ने उन्हें तौफीक बख्शी है कि वो अल्लाह के हजूर सजदा रेज हों, वो अरफा की रात को अगर शब्बेदारी में गुजारें और अल्लाह के हजूर सजदा रेज रहें और उसकी हमदो सना बयान करते रहें, तो अल्लाह की रहमत से पूरी उम्मीद है मुझे कि परवरदिगार उन पर अपनी खास रहमत नाज़िल फरमाएगा और वो अल्लाह के करीब हो जाएंगे। अगर इस ज़िम्न में किसी के ज़हन में कोई सवाल हो तो मुझे फरमा दें। कुर्बानी के सिलसिले में एक नुक्ता जो मेरे जहन में आया वो अर्ज कर दूं आपसे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा 3 जानवरों की कुर्बानी करते रहे हैं, 3 दुम्बे या बकरे, एक अपने वालदैन और उन तमाम मुसलमानों की तरफ से जो इंतकाल कर चुके हैं, एक खुद अपनी तरफ से और एक अपनी उम्मत के उन लोगों की तरफ से जो कुर्बानी की इस्तेदात नहीं रखते। हम में से जो साहिबान इस सुन्नत पे अमल करना चाहते हैं अल्लाह ने उन्हें इस्तात बख्शी है, तो अगर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलते हुए तीन जानवरों ही की कुर्बानी कर दें, एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले खाना अहले बैत और उन तमाम मुसलमानों की तरफ से जो इंतकाल कर चुके हैं, एक खुद अपनी तरफ से और एक उन तमाम मुसलमानों की तरफ से जो कुर्बानी की इस्तात में रखते हैं, तो कुर्बानी का सवाब कई गुना बढ़ जाएगा। एक तो कुर्बानी का सवाब अपना ही है, फिर सुन्नत पर अमल करने का, और सबसे ज्यादा ये कि अपने उन मुसलमान भाइयों का ख्याल जो फाइनेंशियली और लेस फॉर्चुनेट, उनकी तरफ से कुर्बानी कर देने का सवाब। वैसे ही मेरे जहन में आया कि आज चूंकि ज़िलहज का जिक्र हो रहा है तो ये आपसे मैं गुजारिश कर दूं। लेकिन ये इसी सूरत में है कि अगर हम इस्तात रखते हैं और इबादत की प्रायोरिटीज हैं, वो एक इसी जमाने में मैंने आपकी खिदमत में पेश की थी कि सबसे अव्वलीन हैसियत जो चीज़ रखती है वो फ़र्ज़ हैं, वो तमाम चीज़ें जो हम पर फ़र्ज हैं वो पहले अदा होनी चाहिए। और जब हम फ़र्ज कहते हैं तो उसका मतलब सिर्फ फ़र्ज इबादत नहीं है। हमने समा और दी अदर दीन में इसमें कंपार्टमेंट कायम कर दिए, इसे कंपार्टमेंटलाइज कर दिया, और हम अपनी कम इल्मी की वजह से ये समझ बैठे कि इस्लाम सिर्फ इबादत का नाम है, ऐसा नहीं है। इस्लाम तो इंसान की जिंदगी के तमाम तर पहलुओं पर मुहित है। तो फर्ज से मुराद सिर्फ फर्ज इबादत नहीं, बल्कि वो तमाम जिम्मेदारियां जो हम पर आयद की गई हैं रब ताला की तरफ से, और जिन जिन लोगों के हम पर हकूक हैं उन हकूक की अदायगी भी हम पर फर्ज है। हम पर अपनी इमीडिएट फैमिली की कफालत फर्ज है और हम उसके लिए अल्लाह के हजूर जवाबदेह होंगे कि हमने अपनी इमीडिएट फैमिली को लुक आफ्टर कैसे किया। हमारे जो कुछ भी वसाइल हैं उनमें रहते हुए अपनी इमीडिएट फैमिली को बेहतरीन कफालत मुहैया करना हम पर फर्ज है, लेकिन अपने वसाइल में रहते हुए माँ बाप की खिदमत और उनकी इताअत हम पर फर्ज है, अपने बहन भाइयों की वेलफेयर को देखना हम पर फर्ज है, उनके हर मुश्किल और कड़े वक्त में उनके साथ खड़ा होना हम पर फर्ज है, पड़ोसियों का ख्याल रखना हम पर फर्ज है। ये याद रखिए कि ये चंद एक मिसालें आप पे वादे की हैं, इन तमाम चीजों के लिए हमें अल्लाह के हजूर जवाबदेह होना है। इसके अंदर की गई कोताहियां उसके लिए हमें अल्लाह को जवाब देना होगा। तो फर्ज जो हम पर किया गया है, चाहे वो फर्ज इबादत हैं या दूसरे फराइज हैं, उनको अव्वलीन हैसियत हासिल है। उसके बाद वो चीजें जो हम पर वाजिब की गई हैं उनको अदा किया जाना चाहिए, नफल इबादत हों या दूसरी नफली चीजें हों, वो सबसे आखिर पर आती हैं। और ये याद रखिए कि हम नफल के लिए फर्ज को कुर्बान नहीं कर सकते, क्योंकि नफल बायसे सवाब बहुत है लेकिन उसकी पुचकिच नहीं है। अगर हमसे रह भी गया तो उसके लिए पुचकिच नहीं होगी हमसे, लेकिन फर्ज के लिए हर हाल में पुचकिच होगी और उसके लिए हमें जवाब देना होगा। इसलिए मैंने इस्तेआत पर बहुत जोर दिया था कि कहीं ऐसा ना हो कि हम कुर्बानी इस तरह की करने के सिलसिले में अपने लवाकीन जो या अपने डिपेंडेंट्स उनके सिलसिले में जो हम पर फर्ज आयद होते हैं हम उनसे कोताही कर जाएं, ये नहीं होना चाहिए। इस जमीन में कोई सवाल है तो मुझे फरमा दीजिए, उसका मैं जवाब।
जो आपने फरमाया कि रात की इबादत जो करनी है उसमें क्या कुछ शामिल कर सकता है सर, उसका क्या तरीकेकार है?
नवाफिल पढ़े जाएं रात में और अल्लाह की हम्द व सना की जाए, उसका जिक्र का किसी रंग में हो, और बिलखसूस तलावत कलाम पाक ये की जानी चाहिए। तलावत कलाम पाक के सिलसिले में ये मैं गुजारिश कर दूं कि हम तलावत करते वक्त उसके आदाब को मलहूज खातर नहीं रखते। जैसे कि आपको मालूम है कि कुरान पाक में जो अल्फाज हैं हर लफ्ज के मातहत फरिश्ते हैं, और जब हम कलाम पाक की तलावत करते हैं तो फरिश्ते इसे बड़े शौक से सुनते हैं। जिस जगह पर और जिस टाइम पर तलावत रेगुलर तौर पे की जाती है तो ये फरिश्ते मौकल जो भी आप कहना चाहें वो वहाँ उस वक्त मुकर्रर पर आ जाते हैं इस शौक के मारे कि यहाँ तलावत होगी हम सुनेंगे। और ये याद रखिए कि रूहें फरिश्ते और जिन्नात नेक जिन्नात उस जगह बहुत शौक से आते हैं जहाँ पाकिजगी होती है और खुशबू होती है, जहां ऐसी स्मेल हो जो नागवार गुजरती हो उस जगह ये नहीं आते। तो जब हम कुरान पाक की तलावत करते हैं एक तो जिस तरह अल्लाह ने फरमाया कि एक एक लफ्ज क्लियर करके पढ़ा जाना चाहिए, इस तरह से हम पढ़ें कि एक एक लफ्ज क्लियर हो, मुकम्मल अदायगी उसकी हो और ठहर ठहर के पढ़ा जाए, एक तो इसके आदाब में ये चीज बुनियादी है। फिर खुद हम बावजू हों और जिस जगह कुरान पाक पढ़ा जा रहा है उस जगह अगर खुशबू सुलगा ली जाए किसी तौर पर भी, और अगर एलर्जी है या किसी वजह से सुलगाई नहीं जा सकती तो फिर अपने कपड़ों को खुशबू लगा ली जाए ताकि उस जगह खुशबू रहे। तो इससे अल्लाह की रहमतें और बरकतें हासिल होती हैं। कुरान पाक पढ़ते वक्त इसका खास तौर पर ख्याल रखिए कि खुद हम पाक साफ हों, हमारे कपड़े साफ हों और कोई नागवार बू ना हमसे उठ रही हो, प्याज है लहसुन है इस तरह की, और कमरे में खुशबू सुलगा लें या अपने कपड़ों को खुशबू लगा लें। कलाम पाक की तलावत उसकी फजीलत का अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि जनाब हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह بہت جید عالم گزرے, امام تھے اپنے وقت کے, بڑے نیک انسان. ایک رات خواب میں رب تعالیٰ کی زیارت ہو گئی اور رب نے پوچھا کہ مالک تمہیں کیا چاہیے؟ تو حضرت امام مالک نے عرض کیا کہ یا باری تعالیٰ, مجھے آپ اپنے تک پہنچنے کا کوئی آسان اور مختصر راستہ بتا دیں. تو رب تعالیٰ نے جواب دیا خواب ہی میں کہ پھر قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کیا کرو. تو یہ جو ہم وظائف کے قصے میں تسبیحات کے چکر میں رہتے ہیں کہ شاید وہ رب تک پہنچنے کا زینہ ہے, اس کی نسبت یہ کہیں آسان راستہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے. عجیب بات یہ ہے کہ ہم لوگ قرآن پاک ہی سے وہ وظائف لیتے ہیں کہ قرآن پاک کی کسی سورت کی کوئی آیت یا آیت کا کوئی حصہ ہم جپنے لگتے ہیں, تسبیح پڑھنے لگتے ہیں. لیکن پورے قرآن پاک کی تلاوت ترتیب سے کرتے ہوئے گھبراتے ہیں. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ کوئی شخص پورا والٹ لینے سے ہچکچائے اور اس میں سے کوئی جزوی رقم نکالے اور خوش ہو کہ میں نے بہت کچھ لے لیا, جبکہ اس والٹ میں سے لی گئی رقم کی ٹوٹل رقم کا جزو ہے. ایک حصہ لے کے ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہم یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں, لیکن پورا والٹ جس کے اندر وہ رقم ہے جس میں سے چھوٹا سا حصہ لیا گیا, اس سے ہم ہچکچاتے ہیں. تو کلام پاک کی تلاوت کثرت سے اگر ہم کریں تو اس سے بہت برکات حاصل ہوں گی. میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ کلام پاک کی تلاوت اگر ترتیب سے کی جائے تو اس سے ملنے والے انعامات تسبیحات و وظائف سے کہیں زیادہ ہوں گے. ان دس راتوں میں اور خاص طور پہ عرفہ کی رات میں تلاوت کلام پاک کثرت سے کیجیے.